सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धि सार क्षपणा सार लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतां नमो सिद्धानं नमो आययानं नमो वज्जायानं नमो लोये सौवसाहूनं सिद्धे जिनिंद चंदे आयरिय वज्जाय साहुगणे वंद्य संवदंसन चरितलब्धि परूणे। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित ओरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 51 पर आ गए। प्रथम ऑप्शन सम्यक का यहाँ प्ररूपण चल रहा है। उसमें हमने देखा था कि किसके होता है और किसके नहीं होता, ये हमने बहुत बार उसकी चर्चा की। उसके बाद उसके जो पांच लब्धि है उसके भी हमने नाम देखे। नितिन भाई याद है पांच लब्धियों के नाम बताना आपको? पहली कौन सी है? बहुत अच्छा, ये पांच लब्धि है। तो इन पांच लब्धियों का भी हमने स्वरूप देखा था और प्रायोग्य लब्धि में क्या क्या होता है उसकी चर्चा चल रही थी। प्रायोग्य लब्धि में आते एक स्थिति कांडक घात होता है प्रशस्त अप्रशस्त दोनों कर्मों में, और अनुभाग कांडक घात होता है अप्रशस्त में, और द्विस्थानीय शेष रह जाता है। फिर जो नया बंध होता है वो कैसा होता है? तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बनती है और वो भी घटती चली जाती है, जिसको हम स्थिति बंधापसरण कहते हैं। अंतर्मूर्तक उतनी की उतनी बनती है, फिर कटौती होती है। तो एट ए टाइम कितना कम हो जाता है, तो पल्ले का संख्या कम। इस तरह से 700 से 800 सागर की स्थिति जब घटती है तब जाके एक प्रकृति बंधापसरण का स्थान आता है, यानी विशिष्ट प्रकृतियों का बंध यहाँ तक है, आगे नहीं है। आगे नहीं है ना, आगे उपशम सम्यक तक नहीं है। बाद में क्या होगा तो बाद की बात है, वो वहां करेंगे। अब तो यहां से लेकर उपशम सम्यक के काल तक इन प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा। तो उसमें हमने उसके जो 34 बंधापसरण के स्थान कौन कौन से होते हैं उसकी भी चर्चा की थी। मनुष्य तिरेंचों में 34 होते हैं, बहुनत्रिकादि में 14 होते हैं, हमने देखे थे कहाँ क्या होते हैं सौधर्म ईशान तक। फिर उस सहस्रार तक 13 होते हैं, फिर हमने देखा था उसके ऊपर 11 होते हैं और सातवें नरक में 10 होते हैं। तो ये हमने विस्तार से उसकी चर्चा की थी। अब ये जो प्रशस्त प्रकृतियों में चार स्थानों का और बढ़ता हुआ अनुभाग बंधेगा, ये तो बंध की बात हुई, स्थिति की भी अनुभाग भी। प्रदेश के बारे में प्रकृति तो हम देखी नहीं, तो कौन कौन सी प्रकृति रुकती है वो भी देखा, कितनी बनती है वो भी देखा हमने, कि मनुष्य और तिरेंचों में 71 बनती है, देव और नारकी में 72 बनती है। केवल वो सातवें नरक वाले के उद्योग सहित 73 बन सकती है। अब प्रदेश बंध की बात भी कल हमने देखी थी। अभी प्रदेश बंध में आगम के द्वारा जो बताया गया है उसी को हमें स्वीकार करना है, वहां अपनी कुछ बुद्धि नहीं चलेगी, क्योंकि विशिष्ट प्रकृतियों का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट बंध होता है प्रदेश बंध। और बाकी जो है, अभी हमने जो तीन दंडक देखे, मनुष्य तिरेंचों के लिए जो 71 है, देवनार के बनते उसमें से हमने 4 निकाली 5 डाली, और सातवें नरक के लिए जो अलग से देखी, उनमें अनुत्कृष्ट का बंध होता है, ये बात हमने देखी थी। तो हमने ये 25 नंबर की गाथा में टीका में देखा था कि मिथ्या तो अनंतानुबंधी चार स्त्यान वृद्धित्रिक देव चतुष्क समचतुरस्य संस्थान वज्रषभ नारा सहनन प्रशस्त विहाय गति सुभगादि तीन और निज गोत्र, इन 19 प्रकृतियों का उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है और बाकी जो है उसका अनुत्कृष्ट होता है। अब क्यों, क्या उसमें अपनी बुद्धि का विषय नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये उसके दंडक क्या होता है उसकी भी चर्चा अपनी हुई थी, पहला दंडक, दूसरा दंडक, तीसरा दंडक। पहला दंडक यानी मनुष्य तिरेंचों में बंध योग्य 71 प्रकृतियां, दूसरा दंडक देव संबंधा, वो जो देव है वो मनुष्य चतुष्क और वज्रषभ नारा सहनन बांधते हैं, बाकी प्रकृतियां वही है, हाँ छठे नरक तक के नरक, और सातवीं पृथ्वी वालों के लिए तीसरा दंडक बताया है, उसमें बाकी तो वही लेना है, केवल वो तिरंच द्विक निज गोत्र और उद्योत लेना वहां। तो इसकी भी चर्चा हुई थी। अब ये तो बंध के बारे में हमने विस्तार से देखा, चारों प्रकार का बंध देखा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। अब यहाँ उदय की बात पीछे चली गई, देखो 28 नंबर की गाथा के ऊपर लिखा है, अब उसी जीव के उदय कहते, उसी जीव ने ये प्रायोगिक लब्धि में जो आया है उसकी बात यहाँ चलेगी। 28 नंबर गाथा पढ़ेंगे, उदय चौदस घादी नितापयलाण में कदर गम तो मोहे दस सीणा में वचिठाणम से सगे सजोगे कम। उदय चतुर्दश घातिन निद्रा प्रचलाना में कतर कम तो मोहे दशस्यात्नामनि वचस्थानम शेषकम सयोग्येकम्। देखो प्रथमोपशम सम्यक्त्व सन्मुख जीव के नरक गति में अभी अलग अलग गतियों में कौन कौन से उदय रूप है उसकी बात चलेगी। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की निद्रादि 5, बिना 4। ऐसा क्यों लिखा निद्रादि 5, बिना 4? तो ये 4 कौन सी होगी वीरेश भाई? हाँ आप बताना चाहते, बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो।
हाँ
अवधि दर्शन, ये इनका क्या उदय है तो किसका नहीं है?
ज्ञान बुद्धि
और
निद्रा प्रचला,
यानी स्त्यान बुद्धि निद्रा, निद्रा प्रचला, प्रचला निद्रा और प्रचला का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? हमने देखा जागृत अवस्था में सम्यक्त की प्राप्ति होती है, ये हमने कंडीशन देखी थी। नींद में सम्यक्त तो नहीं प्राप्त होता, तो यहाँ जी जागृत है तो पांचों निद्रा में से किसी का भी उदय नहीं है, ख्याल में यही बात। उल्टा पुल्टा बोल रहे अंतराय की 5, यहाँ उदय की बात चल रही है अभी, मोहनी की 10, 9 या 8। ये 10, 9, 8 कैसे लिया अरविंद भाई?
10, 9
हाँ मिथ्या तो की,
अनंतानुबंधी यहाँ जो चारों चार है उसकी क्रोध मान माया लोग माने अनंतानुबंधी क्रोध
बहुत है, यानी 4 प्रकार के क्रोध, या मान या माया या लोभ, 4
वेद तो एक ही है
यहाँ। कौन सा है?
नारकी है ना?
हाँ नारकी में,
नहीं तो
3 में से एक लेना है, हम सामान्य से बात करेंगे। हाँ
3 में से बाद में 2 युगल हास्य रहती है, उसके
भय जीरो या तो एक होगा भय या जुगुप्सा होगा, या हम ऐसा लिखेंगे ना, 2 हो गए, 1 हो गए, 1 हो गए या 0 हो गए। अभी उनको टोटल करने। देखो ये इसको बंध के उदय के कूट कहते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में उदय कितने प्रकृतियों का हो सकता है, मिथ्यात्व का तो है ही है, क्रोध या मान या माया या लोभ। तो जब क्रोध कहेंगे तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानारण, प्रत्याख्यानारण, संयोलन, चार प्रकार होते। फिर एक कोई वेद, अभी हम ये चारों गतियों की अपेक्षा कहेंगे तो किसी न किसी वेद का उदय है। अब नारकी में कहेंगे तो नपुसक वेद का उदय। फिर हास्यरति या शोकरति का उदय चल रहा है, उदय की बात है। बंध यहाँ रुका है, उदय की बात चल रही है अपनी, वो नहीं भूलना। भय जुगुप्सा या तो दोनों का उदय होता है, या अकेले भय का, अकेले जुगुप्सा, या दोनों का भी नहीं, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में बात पलटती है। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज है। तो हम गिनेंगे इसको, हर एक लाइन में से गिनना। तो एक और चार पांच, एक छह, दो आठ और दो दस, तो ये दस हो जाएगी। यदि भय या जुगुप्सा अकेले को लेंगे तो नौ हो जाएगी, दोनों ही नहीं होंगे तो आठ हो जाएगी। तो यहाँ सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, उसको मोहनीय के दस का उदय होगा, नौ का होगा या आठ का होगा। जब हमने उदय के कूट देखे थे तो सात वाला भी एक स्थान देखा था लक्ष्मी जी, वो होगा कि नहीं होगा किसी को? बोलो क्यों, किसके होता है वो? हाँ, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, अनंतानुबंधी की संयोजना करने के बाद जो संयोजना होती है पहले गुणस्थान में आता है, तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं, यानी बंद है, आवली तक उदय नहीं है, इसलिए उसके वो सात वाले स्थान बन सकता है। उसकी तो बात है नहीं है, यह तो प्रथम उपशम की बात है। ख्याल में आई बात? तो यहाँ देख रहे हैं हम, फिर पढ़ेंगे ज्ञानावरण की पांच, दर्शनावरण की चार ही लेना है क्योंकि निद्रा का उदय नहीं है, ये जागृत अवस्था में ही होती है। अंतराय की पांच, मोहनी की दस, नौ या आठ, आयु की एक नरकायु, उसका उदय चल रहा है नारके में हम देख रहे हैं, और नाम कर्म की भाषा पर्याप्ति काल में उदय आने योग्य 29। ये भाषा पर्याप्ति काल यहाँ बताया है, और कौन कौन से काल होते हैं आपको याद है?
पांच काल होते हैं,
पांच काल होते हैं, इतना तो याद है। वीरेश भी आपको याद है? कौन बताना चाहते हैं? नलिन भाई। हाँ,
एक विग्रह गति में होता है।
अच्छा, विग्रह गति काल, मिश्र शरीर काल। हाँ, फिर पहले उच्छ्वास और फिर भाषा। देखो, नाम कर्म के उदय अलग अलग जगह अलग अलग कर्मों का उदय शुरू हो जाता है। तो विग्रह गति में अमुक कितने प्रकृतियों का उदय है? 21 का उदय है। फिर उसमें से कुछ का मिट जाता है, जैसे अनुपूर्वी का मिट जाता है, और अन्य कुछ प्रकृतियों का शुरू हो जाता है। संस्थान नाम कर्म है, शरीर नाम कर्म है, प्रत्येक वगैरह वगैरह, वो वहां चालू हो जाता है। जिसका सहन है उसका सहन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वहां उसको कहेंगे मिश्र शरीर काल, यानी वो शरीर पर्याप्ति तक का काल गिनना। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसको हम कहेंगे शरीर पर्याप्ति काल, क्योंकि शरीर पर्याप्ति काल पूर्ण होने पर वहां परघात विहार गति इसका उदय चालू हो जाता है। एक इंद्रिय हो गए तो आतक उद्योग का भी उदय शुरू। आपका कुछ प्रश्न है? देखो देखो, आप कहते हैं बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो पर्याप्ति पूरी, पर्याप्ति जब पूरी होती है, जो कहीं अन्य भव से मरकर माँ के गर्भ में पहले समय में आ गया तभी पर्याप्ति शुरू हुई थी। जब जन्म हॉस्पिटल वाला जन्म होता है तो कोई नए उसमें कुछ नहीं बातें बनती, वो जब गर्भ में आया तभी वो पर्याप्ति शुरू होती है, और वहां ये सब काल बताए गए। तो ये शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से लेकर उच्छ्वास पर्याप्ति तक का काल है। उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उच्छ्वास पर्याप्ति काल, भाषा पर्याप्ति काल तक का है, और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर भाषा पर्याप्ति काल मरण तक है, उसको भाषा पर्याप्ति काल कहेंगे। उस गति में जितनी उदय योग्य प्रकृतियां हैं वो वहां सब उदय रूप हो गई। नाम कर्म के उदय गुणस्थान के अनुसार नहीं होते, वो तो उसके जो काल बताए है उसके अनुसार उसके उदय होते हैं। यह उदय की बात चली, बंधक की नहीं। अब नारकी जीव में सम्यक तो कब होगा, पर्याप्त अवस्था में कि अपर्याप्त अवस्था में? बोलो नरेंद्र भाई, इतना विचार करना पड़ता है क्यों? दोनों में कैसे होगा? करके आएगा कि उसके, यह बात किसकी चल रही है? प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व की, जो नया सम्यक्त्व सन्मुख की बात चल रही है। यह अवस्था कब होगी पर्याप्त होने पर? क्योंकि हमने कंडीशंस पहले देखे, चार चतुर्गति भव्य संगी पर्याप्त कंडीशन डाली थी, तो ये पर्याप्ति पूर्ण होने पर, यानी उसका यह भाषा पर्याप्ति का काल। तो यहाँ नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय रहेगा? भाषा पर्याप्ति काल में नाम कर्म की लिखा है, इसलिए
नंबर नाम ही लिखा है।
कहाँ लिखा है 28? अरे अरे अरे, वो तो अप्रमति की 28, वो बात अलग है। चलो घोटाला, ये उदय की बात है। 29 होती है। जब बंद, जब हमने नरक गति वाले नरक गति सहित वाला बंद देखा था, उसमें 28 प्रकृतियां थी। यहाँ उदय की बात है, नरक गति में उदय योग्य कितनी प्रकृतियां है? तो नाम कर्म की 29 प्रकृतियों का उदय रहता है। ये सब हम पढ़ आए हैं कर्मकांड में, बहुत दिन हो गए ना, अभी भूल गए। हमने उसमें ध्रुवोदय भी देखे थे। देखो देखो, अब ये 29 यहाँ गिनाए हम, देखेंगे देखो। गति यानी नरक गति है ना इनकी, यानी गति का उदय रहता है। जाति नाम कर्म पंचेंद्रिय जाति, अब यहाँ तीन शरीर है, वैक्रिय तेजस कारमान अंगोपांग, यानी वैक्रिय अंगोपांग है इनके, निर्माण है, संस्थान है, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु, स्थिर युग यानी स्थिर अस्थिर दोनों का युगल उदय एट ए टाइम होता है, बंध एक एक का होता है, पर उदय दोनों का ही रहता है। ऐसी दो प्रकृतियां, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, फिर त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक भी है, उन्होंने उसका आगे लिखा है, दुर्भोग अनादेय अयशस कीर्ति, ये नारकी है इसलिए सारे हली, उपघात परघात उच्छ्वास, वैसे वो अगर लगे के साथ भी ले सकते थे हम याद करने के लिए, अशुभ विवाह गति और दुस्वर। वेदिनी अभी ये तो हो गई ना, नाम कर्म की 29 बताई, क्योंकि हम ऐसा भी देखते हैं, गति है, जाति है, शरीर है, संस्थान है, स्वयं है, जो अंगोपांग, जैसे इसमें से जो कुछ लागू होती है उसको देखना है। हाँ हाँ, एट ए टाइम उदय दोनों का है, बंद एक का होता है। अभी हम ज्ञानावरण की देखी 5, दर्शनावरण की हमने 4 देखी, अंतराय की 5 देखी, मुनि की 9, 10, 9 या 8 देखी, नाम कर्म की नारकी में 29 देखी, वेदिनी की कोई एक देखो, वहां पर भी साता असाता है ना, वो तो चेंज होता रहता। गोत्र की एक, नीच गोत्र, ऐसे इन प्रकृतियों का उदय है। बंद की बात देखी थी हमने, यहाँ उदय कौन कौन सी का है उसकी बात यहाँ करते। यहाँ मोहनी की और नाम कर्म की उदय रूप प्रकृतियों के बदलने से भंग होते हैं। मोहिनी की कौन कौन सी बदलेगी बोलो?
ये चार चार बदलेगी।
देखो ये क्रोध या मान या माया या लोभ बदलेगी। वेद तो वही है नपुंसक वेद, हास्य रति या शोक रति, और ये भय की भी वो भी बदलेगी, तो उससे हम भंग कहेंगे उसको। नाम कर्म के उदय रूप यहाँ क्या क्या बदलेगा नाम कर्म में? हमेशा के लिए वो कंडीशन बताई, पर यहाँ तो कुछ नहीं बदलेगा नाम कर्म में, क्योंकि देखो ना
युगल बदलता,
युगल बदल के क्या होगा, दोनों को लिया एट ए टाइम, युगल को कहाँ बदलेंगे? ये ना जागृति बदलेगी, ना जाति बदलेगी, ना शरीर बदलेगी। ये अन्य जो मनुष्य तीरंच होते हैं वो दुर्भग अनादि आदि बदलने की चांसेस है, उदय रूप तो वो भी नहीं बदलेंगे। यहाँ पर नरक गति है, तो नरक गति में वे नहीं, तो ये तो सामान्य कथन बताया उन्होंने कि भंग कैसे होते हैं। यहाँ तो नाम कर्म की नहीं बदलेगी क्योंकि सभी अप्रशस्त लिए है। अन्यत्र जहाँ प्रशस्त अप्रशस्त दोनों का उदय हो सकता है उनके लिए ये स्टेटमेंट है। तो उनका गोमठ सार के कर्मकांड के स्थान समुत्कीर्तन अधिकार में विशेष वर्णन है, वहां से जानना। वो जान लिया और भूल भी गया। हाँ, ऐसे मोहिनी के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि चार प्रकार के क्रोधादि, चार प्रकार के क्रोधादि ने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजवदन क्रोधादि में क्रोध मान माया लोग, यानी क्रोध भी चार प्रकार का, मान भी चार प्रकार का, माया चार प्रकार के, लोग जो उनमें से कोई एक, इसका अर्थ है अर्थात चार प्रकार के क्रोध अथवा चार प्रकार के मान माया या लोभ। नपुंसक वेद हास्य शोक युगल में से एक, रति अरति युगल में से एक, ऐसे आठ प्रकृतियों के उदय सहित किसी जीव के 54 प्रकृतियों का उदय होता है। देखो 54 का हिसाब लगा कौन लगाएंगे अरविंद भाई बताओ? मोहिनी की आठ लिया और बाकी की तो फिक्स है। हाँ बोलो, गिनो गिनो। ज्ञानावरण की पांच,
ज्ञानावरण की पांच, दक्षिणावरण की
चार, अंतराय की 14 हुई, मोहिनी की आठ ली,
मोहिनी की
22 हुई, एक वेदनीय, हाँ एक वेदनीय 23 हो गई, एक आयु 24 हो गए, नीच गोत्र 25 हो गए, और नाम कर्म की 29, कितने हो गए? 54 हो गए ना। वहां मोहिनी के चार कषाय और दो युगल बदलने से, चार कषाय में ये तो हमने क्रोधमान माया लोग के लिए, और दो युगल में हास्य रति वाला युगल लेना एक, और भय जुगुप्सा वाले भी बदल सकते हैं। नहीं, उन्होंने आठ प्रकृति वाला ही है, आठ भंग, उन्हें वेदनीय के दो भंगों से गुणा करने पर 16 भंग होते हैं। अच्छा, दो युगल में हास्य रति और शोक रति को दो युगल का, यानी चार, यानी क्रोध मान माया लोग लिए, हास्य रति या शोक रति लिया, ये दो हुए, ये चार वो दो, और वेदनीय के दो, चार गुना दो गुना दो, 16 भंग होते। नाम कर्म की अप्रशस्त प्रकृतियों का ही यहाँ उदय है, इसलिए नाम कर्म की अपेक्षा भंग नहीं है, ये तो हमने पहले ही देखा था। यानी जब मोहिनी के आठ पकड़ेंगे तब की बात है, तो 54 हो जाएगी टोटल, और फिर 54 वाला एक स्थान होगा उदय रूप, और उसमें प्रकृतियां बदलने से भंग होंगे। कौन सी प्रकृतियां बदलेंगी? क्रोधादि चार, हास्यादि के दो युगल, और वेदनी के दो, इसमें चेंज हो सकता है, तो उसके कॉम्बिनेशन हो गए तो 16 हो गए भंग। बाकी नाम कर्म में यहाँ कुछ पलटना नहीं होता, वो तो सारे अप्रशस्त ही है। पुनश्च भैया जुगुप्सा में से किसी एक के मिलाने पर मोहनी की 9 सहित कुल 55 का उदय है। ऊपर हमने 54 देखा था, 54 वहाँ भय जुगुप्सा दोनों को ही नहीं लिया था, यहाँ एक लेना है। भय लेंगे तो भी 55, जुगुप्सा लेंगे तो भी 55। वहाँ पूर्वोक्त 16 भंगों, भय और जुगुप्सा से गुणा करने पर 32 भंग होते हैं। समझ में आई बात? जो 55 का स्थान है उसमें किसी के भय होंगे, किसी के जुगुप्सा, और पहले तो 16 है ही है, तो 16 गुना 32 दो 32 हो जाते हैं। पुनश्च भय और जुगुप्सा दोनों से युक्त मुनि की 10 सहित 56 प्रकृतियों का उदय होता है। अब यहाँ भय जुगुप्सा का ऑप्शन नहीं है, दोनों ही है, तो वो 16 भंग हो गए। वहाँ 16 ही भंग जानना, क्योंकि यहाँ दोनों का उदय युगपद है। युगपद है ना, एट ए टाइम दोनों का उदय चल रहा है। यहाँ क्रोध के साथ अन्य अन्य प्रकृति लगाने पर प्रथम भंग होता है, क्रोध की जगह मान कहने पर दूसरा भंग होता है। इसी प्रकार प्रकृति बदलने से भंगों का होना जानना। ये भंगों की विस्तार से चर्चा अपनी पहले हुई है कर्मकांड के विषय में, यानी कैसे उसके भंग हो जाते हैं। तो हमने अभी तक नरक की बात देखी, अब तीर्यंचों की बात देखी। तीर्यंच गति में पूर्वोक्त प्रकृतियों में एक सहनन मिलाने पर 55, 56, 57 का उदय जानना। इनमें भी ज्ञानावरण की बोलो अभी, हाँ गिनो, पांच दर्शनावरण, हाँ मुनि की 8, 9 या 10, या 10, 9, 8, ऐसे तीन है। नाम कर्म की 29 होती है,
देखनी पड़ेगी।
कैसे वेरिएबल है? संगी पंचेंद्रिय के ही होगा, सहनन एक्स्ट्रा है, और उद्योत हो भी सकता है, परंतु उसकी बात बाद में करेंगे हम। अभी तो उन्होंने बताया एक सहनन मिलाने पर, बाकी गति कौन सी है? तीर्यंच गति है, जाति पंचेंद्रिय है, शरीर में औदारिक शरीर, औदारिक अंगों का संस्थान में से 6 संस्थान हो सकते हैं। फिर कौन से लिए? सिर अस्थिर, शुभ अशुभ, वो अगुरु लघु उपघात प्रघात उच्छ्वास, वो सब ले लेना, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, भंग बन जाएंगे। यानी इसमें वो तो सुभग दुर्भग आदे अनादे वो सब हो जाएंगे, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति वो उसको ले लेना। विवाह गति में भी प्रशस्त या अप्रशस्त हो गए, सुस्वर या दुस्वर होगा, वेदनीय में भी कोई एक गोत्र तो नीच गोत्र होगा। देखो अभी हम यहां से पढ़ेंगे। तिर्यंच गति में पूर्व प्रकृतियों में एक सहनन मिलाने पर 55, 56, 57। ये 55, 56 और 57 तीन ऑप्शन क्यों दिए? वीरेश भाई, हाँ बहुत अच्छा। मोहनी के किसी के 8 है, किसी के 9 है, या एक ही जीव के अलग अलग समयों में 8, 9 और 10 हो जाते हैं, इसलिए उनकी संख्या, टोटल संख्या बदलती है। वहाँ 55 के उदय में यहाँ तीनों वेद पाए जाते हैं। अब देखो तीर्यंचों में तीनों ही वेद हो सकते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, है ना। उनके बदलने से मोहनी के 24 भंग होते हैं, पचपन का उदय लिया ना, पचपन का उदय ने वो भयजुगुप्सा बिना वाला लिया, क्रोधमान माया लोक के साथ तीन वेद तो 12 हो गए, और दो युगल 24 हुए, पहले हमने कैसे देखा था, एक ही वेद था और क्रोधादि चार के साथ युगल को बदलाया था, आठ से सोलह हुआ था। नहीं, वो वेदनी के साथ सोलह किया था। मोनी के चौबीस है, मोनी के चौबीस के साथ वेदनी के लगाएंगे तो उससे डबल अड़तालीस हो जाएगी। देखो फिर से चौबीस है, यह हमने देखा था ना। अभी तिरंज की बात करते हैं, तिरंज में एक मिथ्या तो है, ये भी क्रोधादि चार पलटने वाले के तीनों वेद लेना, अभी दो युगल, अभी ये वाला लिया क्योंकि आठ हमें टोटल है, एक चार पांच एक छह दो आठ। अभी इसमें क्या क्या पलट सकता है मोनी में अकेले, तो एक ये चार हो गए, यानी एक दो तीन चार ये पलट सकते हैं, ये तीन चार त्रिक बारह और ये दो युगल अर्धुनी चौबीस, ये मुनी के चौबीस हुए, इसके साथ वेदनी के लगाओ सात आ सात तो अड़तालीस हो जाएगी, और नाम कर्म की तो और ज्यादा हो जाएगी। देखो उनके बदलने से मुनी के चौबीस भंग होते हैं, वेदनीय के दो है और नाम कर्म के संठाने संठाने इत्यादि सूत्र द्वारा, यानी उसमें क्या क्या चेंज हो सकता है। हाँ, छह संस्थान, छह सहनन, विहागति युगल, सुभग युगल, हमने देखा ना दुर्भग अनादे यशस्कीर्ति अयशस्कीर्ति देखा, उसमें सुभग आदे और यशस्कीर्ति भी हो सकता है, तो सुभग युगल, स्वर युगल, आदे युगल, यशस्कीर्ति युगल, इनके बदलने से, वो तो स्थिर और शुभ तो दोनों दोनों का उदय एट अ टाइम, और बाकी में आइदर युगल में से, तो यहाँ चारों युगल ले लिए, इनके बदलने से 1152 भंग होते हैं, क्योंकि यहाँ इन सबका उदय पाया जाता है, यानी कोई भी संस्थान हो, कोई भी सहनन हो, सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसीलिए सारे ले लेना बंग, यानी विवाह गति कैसे भी हो, सुबह हो या दुर्भग हो, सुस्वर या दुस्वर हो, अयशस्कीर्ति हो, पहले भी हमने देखा हास्यरति का उदय हो या शोकरति का उदय हो, यानी कोई संयोग प्रतिकूल हो तभी तो शोकरति चल रही है, तो सम्यक तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम क्या कहते पहले में, पहले संयोगों को ठीक कर देखो ये सब छह गुना दो, फिर आगे फिर और दो 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 चार बार और ले लिया तो 1152 भंग होते, ये समझ में ही बात कैसे करना, ये सब सब जितने भंग है उसको आपस में गुना करना। देखो हमने क्या क्या देखे थे, छह संस्थान, छह सहनन, फिर दो क्या लिए, विहाय गति, फिर सुभोग, स्वर, आदेय, यशस्कीर्ति, अभी एक दो तीन चार पांच बार है, नहीं ये तो यहाँ 32 हो गए, छह छह 36 करो, अभी 1152 हो गए, वो तो अलग से ली, ये अकेले नाम कर्म की इतने 1152 आ गए ना। हाँ, अभी उसके वो 24 और दो से गुना बाकी है अभी। हाँ, इस प्रकार ये भंग कहे, इनको परस्पर गुणा करने पर, यानी मोहिनी के 24, वेदनी के 2 और नाम के 1152, इनको परस्पर गुणा करने पर 55,296 भंग हुए, यानी इतनी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है उदय की, समझ में आते भंग का अर्थ, ये तो 55 की बात हो गई, 56 की, हाँ कुछ कुछ, हाँ हाँ देखो ये अभी हमने कितना 1152 समझ में आई बात, अभी मोनी के कितने देखे थे 24, सात आशा तक के 2 और ये 1152 ये सब, तो 55,296 भंग हो जाए। अब 56 के उदय में क्या है, किसी के भय का है किसी के जुगुप्सा का, दो से और गुना करना पड़ेगा, तो 56 के उदय में भय जुगुप्सा के गुणा करने पर उनसे दो गुणे यानी 110,592 भंग हुए। 57 के उदय में, अभी यहाँ कोई पलटना नहीं, भय जुगुप्सा दोनों का ही है, इसलिए पहले जितने हमने भंग देखे थे कि 55 के समान 55,296 भंग ही जानना। अब उनमें उद्योत प्रकृति मिलाने पर वहां 56, 57, 58 का उदय होता है, वहां तीनों जगह भंग पूर्वोक्त प्रकार से ही जानना। अब इन सबकी टोटल करना तो इतने टोटल भंग हो गए। होता है ना, इतने पॉसिबिलिटी अलग अलग वेरिएशंस में सम्यक तो होगा, क्योंकि उदय बताता है ना उसको। ये तो केवल इतना ही है, गिन सकते इसको, इन भंगों को। ये उदय रूप प्रकृतियों की बात है, परिणामों की बात करते तो असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग परिणाम होते। पुनश्च मनुष्य गति में तीरियन चवत उदय जानना, विशेष इतना है कि वहां उद्योत सहित उदय नहीं है। ये उद्योत प्रकृति मात्र तीरियंचों के ही होते, कौन से इंद्रिय वालों के होते? बहुत अच्छा, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी के भी होते, परंतु पर्याप्तों के होते। वहां दोनों गोत्र का उदय पाया जाता है। क्या कहा? मनुष्य की विशेषता है, नीच गोत्र भी हो सकता है किसी के, उच्च गोत्र भी होते। इसलिए तीर्यंच गति में कहे हुए भंगों से तीनों जगह गोत्र बदलने से दो गुणा भंग जानना। तीनों जगह ने वो 55, 56 और 57, ये तीन जगह है, क्योंकि इसमें भी 6 संस्थान है, 6 सहनन है, वो विहाय गति, सुस्वर, दुस्वर, ये सब भंग इसमें भी बनते हैं। वहां तो एक नीच गोत्र ही था तीर्यंचों में, यहाँ तो नीच गोत्र उच्च गोत्र दोनों ही हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 110,592 तो हो गए, फिर उससे दो गुना हो जाएंगे वैजुगुप्सा के लिए अलग अलग। देव गति में नरकवत उदय जानना, अब क्या यहाँ की स्पेशलिटी होगी? यहाँ प्रशस्त प्रकृतियों का उदय, विशेष इतना है कि यहाँ नाम कर्म की प्रशस्त प्रकृतियों ही का ही लगाया, उच्च गोत्र का, वहां नीच गोत्र का था, यहाँ उच्च गोत्र का। और मोहनीय में नपुसक वेद बिना स्त्री वेद पुरुष वेद में से किसी एक का, अब ये ऑप्शन रहेगा इनके, वेद बदलने से यहाँ दो गुना भंग हो गए। वहां दो वेदों के बदलने से नरक गति में कहे हुए भंगों से तीनों जगह दो गुणे भंग जानना, यानी यहाँ क्या क्या पलटेगा? ये चार क्रोधादि चार है, वेद दो ने, चार दुनिया 8, दो युगल 8, 16 यहीं पर हो गए। वह युगुप्सा रहित वाले में मोहन्य के 16 हो गए, वेदनी के 2 हो जाएंगे, और फिर आगे नाम कर्म की जो है वो प्रशस्त प्रकृतियां हैं यहाँ सब, परंतु यहाँ गोत्र के है नीच गोत्र उच्च गोत्र, वहां मोहनी से यहाँ के डबल है, वहां के मोहनी से यहाँ के मोहनी डबल है। क्यों? यहाँ दो वेद है, वहां एक ही वेद ना। समझ में आती बात? देवों में स्त्री वेद पुरुष वेद, कोई स्त्रियां है कोई पुरुष है, दोनों को ही समय तो हो सकता है, इसलिए वहां दो भंग करना। एक जीव के पुरुष वेद और कभी स्त्री वेद ऐसा नहीं लेना है, वो अलग अलग जीव की बात है। ऐसे ये भंग निद्रा के उदय रहित जीवों की अपेक्षा करें, पुनश्च इन चारों गतियों में जो उदय कहे उनमें उदय रूप निद्रा और प्रचला में से कोई एक प्रकृति मिलाने पर एक एक प्रकृति से अधिक का उदय होता है। यानी निद्रा प्रचला का उदय जो है वो तो जैसे नींद में सो जाने वाली अवस्था नहीं होती, और वो ऑप्शनल बताए किसी के हो सकता है। वहां उन दोनों प्रकृतियों के बदलने से सर्वत्र, क्योंकि ये तो अभी पहली कंडीशन है, सन्मुख पात्र, सन्मुख अवस्था वाली भी, वो करण लब्धि का अंत समय वो नहीं लिया है, उपशम समय तो प्राप्ति का प्रथम समय, वहां उन दोनों प्रकृतियों के बदलने से सर्वत्र पूर्वोक्त भंगों से दो गुणे भंग जानना। यानी ध्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचार प्रलय, इन तीन का उदय तो बिल्कुल होता ही नहीं किसी, और इन दोनों का तो भजन ही है, ऑप्शन है, वो भी अभी सन्मुख अवस्था में, प्रिय अवस्था में, पूर्व अवस्था में ले लिया। अब 29 नंबर की गाथा, उदय पत्ते कठिदि सवेद गोहोदी बिच उठानम सत्थे सत्थे उदयल रस बुद्धि उदयवतामुदये प्राप्ते एकस्थिति कस्य वेद को भवति द्विचतुस्थानम शस्ते शस्ते उदीयमान रस बुद्धि। क्या कहते, देखो उदयवान प्रकृतियों की उदय की अपेक्षा एक स्थिति अर्थात उदय को प्राप्त हुआ एक निषेक उसी का भोक्ता वह जीव होता है। यहाँ भी उदय की बात है, कौन से प्रकृतियों का उदय होता है वो तो बात देखी। जैसे बंध में हमने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध देखा था, और उसमें प्रायोगिक लब्धि में क्या क्या होता है उसकी चर्चा की। यहाँ बात उदय की चल रही है, कौन से प्रकृतियों के उदय और उसके भंग अभी हमने देखे। अब कौन से स्थिति का उदय होता है, तो सत्ता में तो एक एक निषेक पड़े हैं, तो उदय किसका चलता है, तो ये एक वर्तमान निषेक उदय रूप है। कौन से स्थिति का उदय चल रहा है, ये इस निषेक का एक स्थिति का उदय चल रहा है, इसको निषेक भी कहेंगे। सत्ता का पहला निषेक जो उदय रूप है उसी का उदय चल रहा है। यहाँ लिखा है ना, देखो उदयवान प्रकृतियों की, उदयवान प्रकृतियों ने जो उदय चल रहे हैं अभी, अनंतानुबंधी क्रोध का उदय चल रहा है, मान माया का नहीं है तो उसका वेदक नहीं, उसका वो तो ऊपर पड़ी है। यहाँ उदय किसका चल रहा है, क्रोध का चल रहा है, इसलिए उदयवान प्रकृति के सत्ता में भले सब प्रकृतियां पड़ी है। जैसे मनुष्य है तो उसके मनुष्य गति का उदय चल रहा है, अन्य गति के निषेक पड़े हैं सत्ता में। अब उदय, अब यहाँ तो स्थिति की बात चल रही है, कौन सी स्थिति का उदय चल रहा है, तो वर्तमान एक निषेक का उदय चल रहा है। तो उदयवान प्रकृतियों की उदय की अपेक्षा एक स्थिति अर्थात उदय को प्राप्त हुआ एक निषेक उसी का भोक्ता वह जीव होता है। देखो भोक्ता होता है, वेदक होता है, यानी इसका उदय चल रहा है, यानी जीव के साथ इसका निमित्त बनता है, इसलिए जीव उसका भोक्ता है ऐसा कहेंगे, वेदक है ऐसा कहेंगे। एक कथन अलग अलग है परंतु उसका उदय चल रहा है, इतना ही उसका अर्थ है। उसके अप्रशस्त प्रकृतियों का, अभी उदय की बात चल रही है, अनुभाग उदय किस रूप से है, अप्रशस्त प्रकृतियों का द्विस्थान रूप और प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थान रूप अनुभाग का भोगना होता है, यानी उदय होता है। हमने देखा सत्ता का अनुभाग भी द्विस्थान किया है अप्रशस्त में, और प्रशस्त में चतुस्थान है, तो वैसा ही उसका उदय भी चलता है, इसका उदय भी बढ़ता हुआ उदय चलेगा और अप्रशस्त का घटता हुआ चलेगा। तो ये अभी तक प्रकृति उदय और स्थिति उदय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हम 30 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। अजहम कस पदेशम अनुभव दिशोदयाणम तो उदयलाणम पयड़ी चौकण मुदीर गो होदी अजगण्यम अनुत्कृष्ट प्रदेशम अनुभव दिशोदयाणम तो उदयवताम प्रकृति चतुष्काणामुदीर को भवती। देखो उदय प्रकृतियों के, यानी जो प्रकृतियां उदय रूप है उसकी बात चल रही है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट प्रदेश को भोगता है। यहाँ जो उदय चल रहा है, प्रदेश यानी नंबर ऑफ परमाणु, कितने उदय रूप है, क्या जघन्य है क्या अजघन्य है, क्या उत्कृष्ट है क्या अनुत्कृष्ट है, तो कहते हैं अजघन्य और अनुत्कृष्ट है। भोगता है ना उसका उदय चल रहा है, जघन्य या उत्कृष्ट प्रदेशों का यहाँ उदय नहीं है। बंध में हमने देखा था कुछ 19 प्रकृतियां बताई थी, उसका उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट बंध होता है बताया था, और बाकी 61 प्रकृतियों का वहां बताया था कि अनुत्कृष्ट बंध होता है। यहाँ उदय की बात चल रही है, ना जघन्य ही है और ना उत्कृष्ट भी है, अजघन्य और अनुत्कृष्ट प्रदेश उदय होता है, बस इतनी बात। यहाँ जो प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाव उदय रूप कहे उन्हीं का यह उदीर्णा करने वाला होता है, जिसका उदय है उसी की उदीर्णा होती है। ये नियम यहाँ बताया कि जिसका उदय है उसी प्रकृति का उदीर्णा होगी, जिस प्रकृति के उदय रूप है उसी के प्रदेश उदीर्णा रूप हो गए, यानी परमाणु एक ही बात है, उसी की स्थिति वो वर्तमान है वो उदीर्णा रूप, ऊपर से भी आएंगे उदीर्णा होकर उसमें मिल जाएंगे उदय रूप निषेक में, और अनुभव की भी बात वही है। क्योंकि जिसके जिनका उदय है उसके उन्हीं की उदीर्णा भी पाई जाती है। हमने क्या कहा, अनुभाग का उदय कैसा है तो अप्रशस्त का द्विस्थानी है, तो ऊपर के किसी निषेक में से नीचे परमाणु आ मिलते हैं तो उनका अनुभाग का कैसा उदय होगा, तो उसी द्विस्थानी, जैसा उदय है वैसी उदीर्णा होती है। वर्तमान स्थिति जो निषेक है उसका उदय चल रहा है, ऊपर के निषेकों में से अपकर्षण होकर उसमें मिल जाएंगे तो भी वो उसी में मिलकर उदय में आएंगे, तो उसी की उस स्थिति की कहलाएगी, उसमें मिल जाते हैं। इस तरह उदय और उदीर्णा कही समझ में। पहले हमने स्थिति बंधापसरण देखा, प्रकृति बंधापसरण देखा, फिर उसमें प्रदेश बंध की बात भी देखी और अनुभाग बंध की भी बात देखी। अब उसके बाद यहाँ उदय की चर्चा की, कौन से प्रकृतियां उदय रूप होती है, क्या होता है, अलग अलग गतियों में उसके भंग कैसे होते, उसकी चर्चा की। उदीर्णा उदय के साथ भी बता दी। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब सत्व कहते हैं, सत्ता में क्या क्या हो सकता है उसकी चर्चा चल रही है। 31 नंबर सत्व का अर्थ समझते हो ना जीतू भाई, सत्ता में कौन सी प्रकृतियां पड़ी है उसकी बात है। अब हमने अभी ध्यान देखी, नरक गति वाला जीव है, सम्यक के सन्मुख है, अभी उसका उदय नरक गति का चल रहा है, बंध कौन सा चल रहा है, मनुष्य गति का, हम सातवें नरक को छोड़ देते हैं, परंतु उसकी सत्ता में क्या क्या होगा, तो अन्य गति ये बात है, सत्व की बात, तो उसकी सत्ता में कौन कौन सी क्या क्या है, प्रदेश प्रकृति स्थिति वगैरह उसकी बात। गाथा पढ़ेंगे, द्वितीया तीर्थ हार चौगणा समगे नहीनावा विश्वेनुनावाविय सौवे पयडी हवे सत्तम द्वित्रियायु तीर्था हर चतुष्काणां सम्यक्त्वे नहीनावा मिश्रेणोनावापि च सर्वेषां प्रकृतीनां भवे सत्व। किसका सत्व नहीं होता ये बताया है, और इनको छोड़कर बाकी सबका सत्व होता है सबे। सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव, क्या उसने आयु बांधी है आगामी भोग के, ऐसी जरूरी है सुशीला बेन, जिसको हम कहे ना ये बद्धायु है या अबद्धायु, तो किसको सम्यक तो हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो जिसने आयु नहीं बांधी है उसके एक वर्तमान की आयु की सत्ता है, भुज्यमान आयु की सत्ता है, तीन आयु की सत्ता नहीं है, और जिसने आयु का बंधक किया है तो उसकी दो आयु की सत्ता है। मेरी बात, तीन आयु की सत्ता नहीं है, सत्ता है नहीं, सत्ता नहीं है। जिसने आयु का बंधन नहीं किया है उसके भुज्यमान आयु की सत्ता है, अन्य तीन की नहीं है। जिसने आयु का बंधक किया है उसके दो, ऑफकोर्स उसने अन्य आयु के करने चाहिए, इसलिए दो या तीन आयु। मनुष्य ने मनुष्य आयु का ही बंद किया, हो सकता है तो इसलिए तीन आयु भी ना का लिया उसमें आगे ना, इस नियम में दो या तीन आयु भी ना, इसलिए कहते द्वित्री आयु। तीर्थक यानी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला का सवाल ही नहीं प्रथम ऑप्शन होने का। आहार चतुष्क चतुर्थ ना आहार अंगों का वो शरीर और बंधन वो सब उसमें ले लेना। नहीं वही तो है, इनका सत्व नहीं होता है। और सम्यक्त्वेन हीनावा मिश्रेणोना वा, यानी सम्यक प्रकृति हो भी सकती नहीं भी हो सकती, क्योंकि सादी होगा तो उसके होगी, अनादि के वाला उसके नहीं होगी। और मिश्र ने सम्यक मिथ्या तो प्रकृति भी किसी के होगी किसी को नहीं होगी, और इनको छोड़कर बाकी सभी का सत्व है। देखो पढ़ेंगे सम्यक तो सन्मुख अनादि मिथ्या दृष्टि के, अभी कंडीशंस बताते। अबद्धायु के तो फिर अबद्धायु भी बता दिया, यानी उसके एक वर्तमान भुज्यमान आयु की सत्ता है बाकी नहीं है। भुज्यमान आयु बिना तीन आयु उसके क्या क्या नहीं है वो बता रहे। तीर्थंकर आहारक चतुष्क, आहारक चतुष्क का अर्थ है आहारक शरीर, आहारक बंधन, आहारक संघात और आहारक अंगोपांग। हम हमेशा द्विक लेते थे शरीर और अंगोपांग लेते हैं, यहाँ बंधन और संघात, क्योंकि 148 का हिसाब करते हैं तो उसमें बंधन संघात को अलग से बताते। तो ये अनादि वाला लिया ना, इसलिए सम्यक तो मोहनी भी नहीं की लिस्ट में लिया है, और मिश्र मोहनी ने जिसको हम सम्यक मिथ्या तो कहते हैं। इन 10 बिना 138 का सत्व है। उसी बद्धायु के, बद्धायु ने जिसने आयु का बंद किया है उसके एक बद्धमान आयु सहित 139 का सत्व होता है। ये बात ख्याल में आई नितिन भाई, क्या बताया? बद्धमान आयु सहित यानी जो नई बंधी है तो ये एडिशनल हो गई। कोई मनुष्य और उसने मान लेते देवायु बांधी है तो उसकी सत्ता में मनुष्य आयु भी और देवायु भी है, और जिसने मनुष्य ने मनुष्य आयु बांधी है उसको समय तो होगा कि नहीं होगा, तो उसकी सत्ता वो कितने होगा सत्व 138। क्या कहते हैं? देखो सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं है, वो जो पांचवा गुणस्थान वगैरह नहीं प्राप्त करे चौथा तो प्राप्त कर सकता है। अब उसका बाद में क्या होगा वो गिरेगा क्या वो तो सम्यक तो होने में कोई बाधा नहीं है। पुनश्च सम्यक्त्व सन्मुख साधी मिथ्या दृष्टि, भी साधी मिथ्या दृष्टि पहले उसमें भी अबद्धायु लिया। देखो पहले अनादि मिथ्या दृष्टि बद्धायु अबद्धायु दोनों लिए थे, अब ये साधी मिथ्या दृष्टि लिया और अबद्धायु के तो भुज्यमान बिना तीन आयु अबद्धायु लिया ना पहले, ये क्या क्या नहीं होता उसकी लिस्ट बता। तीर्थंकर आहार चतुष्क इन 8 बिना 140 का सत्व है, यानी उसमें कौन कौन से सत्व में क्या बढ़ाया सम्यक मोनि और मिश्र मोनि को बढ़ाया। वहां तो 10 बिना लिया था 138, यहाँ 8 बिना 140, यानी उस 138 में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो प्रकृति ऐड कर दी। परंतु ऐसा भी हो सकता है ना, किसी के तो दोनों की सत्ता है, उद्वेलना करते करते स्थिति घटाई है दोनों की सागर के करीबन स्थिति कर दी है, तब प्रथम ऑप्शन सम्यक तो हो सकता है। परंतु और उद्वेलना आगे बढ़ते बढ़ते सम्यक प्रकृति पहले नष्ट हो जाती है, तो अकेले सम्यक मिथ्या तो है उसकी सत्ता में, तो उसके ये 8 बिना के बदले में वहां 9 बिना कहेंगे। तो कहते सम्यक तो मुनि की उद्वेलना होने पर 139 का सत्व होता है, पहले 140 थे ना, उसने 140 जब कही थे तो 8 बिना कहे, अब हम 9 बिना क्या कहेंगे, 139। मिश्र मुनि की उद्वेलना होने पर है तो सादी मिथ्या दृष्टि, पर ये जो दो प्रकृति है वो दोनों ही उद्वेलना होकर मिथ्या तो रूप टन हो गई, नष्ट हो गई, तो उसके 138 का सत्व है। यानी वो तो जो अनादि की जो प्रकृतियों की अपेक्षा जो संख्या थी वैसे इसकी हो गई, उसी बद्धायु के। अब इसमें बद्धायु लिया तो ऊपर जो जो लिखी है हमने संख्या उसमें एक एक और मिला लिया, उसी बद्धायु के बद्धमान आयु सहित 141, वहां 140 लिया था, यहाँ 141, 140 और 139 का सत्व होता है, क्योंकि आहारक चतुष्क की उद्वेलना हुए बिना तथा तीर्थंकर सत्ता वाला जीव प्रथमोक्षम सम्यक्त के सन्मुख नहीं होता। देखो ये मूल पुस्तक में तथा शब्द नहीं डाला, ये दो अलग अलग जीव लिए, वहां तो ऐसा लिखा था कि आहार चतुष्क की उद्वेलना हुए बिना तीर्थन सत्ता वाला जो प्रथमोक्षम सम्यक्त के सन्मुख नहीं होता, ये तो तीर्थंकर की सत्ता वाला तो प्रथमोक्षम होता ही नहीं कभी, क्योंकि तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्यात्व में कब आता है, जिसने पहले नरकायु बांधकर नरक के सम्मुख है और दूसरे तीसरे नरक में जाने वाला है वो आ सकता है, परंतु वो तो वेदक सम्यक दृष्टि है और वो अंतर्मूर्त के लिए वहां आया है और वहां जाके ही वेदक सम्यक तो प्राप्त करने वाला है, प्रथमोक्षम का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबे काल तक जब मिथ्यात्व में रहता है पल्ले के असंख्यात विभाग तब जाके दोबारा वो प्रथमोक्षम होता है, तो तीर्थंकर की सत्ता वाला तो करता ही नहीं प्रथमोक्षम। दूसरी बात, आहारक चतुष्क की उद्वेलना हुए बिना, आहारक चतुष्क वाली सत्ता वाला जीव जिसने आहारक का बंध किया है मिथ्यात्व में आ भी सकता है, परंतु हमने जो उद्वेलना वाली प्रकृति देखी थी सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होती ना, उसके भी पूर्व छोटे काल में आहारक की उद्वेलना पूर्ण होती, इसलिए जब तक उद्वेलना नहीं होती उतने काल तक प्रथमोक्षम सम्यक तो नहीं होगा, ये बात सिद्ध होती है इसमें। उसका तो प्रथमोक्षम की तीन काल में नहीं होगा, उसके तो होता ही नहीं। देखो विशेषक, जिसके एक साथ आहारक और तीर्थंकर की सत्ता है ऐसा जीव उन दोनों की सत्ता से एक मिथ्यात्व में नहीं आ सकता, ये तो हमने पहले भी जरूर पढ़ा था, परंतु यहाँ प्रश्न है कि तीर्थंकर की सत्ता वाला जीव मिथ्यात्व में आता है तो नरकायु की सत्ता वाला मिथ्यात्व में जाकर अंतर्मूर्त में मरकर नारकी होकर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही क्षोभम सम्यक तो प्राप्त करता है प्रथमोक्षम सम्यक तो नहीं, ऐसा कह सकते कि आहार चतुष्क की उद्वेलना हुए बिना प्रथमोक्षम सम्यक तो के सन्मुख नहीं होता तथा तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि भी प्रथमोक्षम सम्यक तो प्राप्त नहीं करता। ये मूल पुस्तक में ये कन्फ्यूजन था, दोनों इकट्ठा ये तथा शब्द भी नहीं था, तो कोई ऐसा सोच सकता है कि आहार चतुष्क की उद्वेलना हुए बिना तीर्थंकर सत्ता वाला जीव नहीं करता, यानी होने के बाद तीर्थंकर की सत्ता होता, ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग जीव लिए।
लेकिन तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि भी सर्वक्षण समय को प्राप्त कर सकता,
करेगा ही ना,
करेगा,
और वो तभी मिथ्यात्व में आता है जिसने नरकायु बांधी है,
और वो दूसरी तीसरे में के पहले में,
यानी उसने क्षायिक नहीं किया है, बस इतना ही लेगा, वो पहले दूसरी तीसरे कहीं पर भी जाए, वैसे दूसरी तीसरी की मुख्यता आती है, और वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही वेदक समय तक, खाली यही जो तीर्थंकर की सत्ता वाले वही जीव इस अपर्याप्त अवस्था में प्राप्त कर सकते, अन्य कोई नहीं कर सकता, अन्य भी जो सादी मिथ्या दृष्टि है वेदक समय तो प्राप्त करेंगे, वो भी पर्याप्ति पूर्ण होने पर करेंगे। ये तीर्थंकर की सत्ता वाले की विशेषता है कि वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही समय तो प्राप्त हो जाते हैं, नरक में गए ना वहां, हम रुकेंगे यहीं पर जा।